शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाबा आकर के हम बच्चों को अपना बनाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे करके हम सभी का जन्म ब्रह्मन जन्म श्रेष्ठ जन्म देते। नयनहीन से नयन वाला बना करके त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बना देते। ऐसा परम सौभाग्य इस सारे वर्ल्ड ड्रामा में सिर्फ हम गिनी चुनी हुई आत्मा ही लेती है। भक्ति मार्ग में गायन करते थे कि भगवान के साथ हमारे सर्व संबंध, वो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, परंतु वो सिर्फ गाते थे। और संगम युग पर हम बच्चे उन सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं। बाबा निराकार है, निराकार ने साकार ब्रह्मा बाप में आकर के उसके जो गुण हैं, उस निराकार की जो शक्तियां हैं, उसके जो संबंध है, उन सभी की अनुभूति हम बच्चों को कराई। जब बाबा के द्वारा ये सर्व अनुभूति हम कर लेते हैं, तभी नष्ट मोह स्मृति लब्ध बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों का लक्ष्य, जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है बाप समान बनना। चाहे कोई 50 वर्ष से चल रहा, 80 वर्ष से चल रहा, या तीन बरस से, एक बरस से चल रहा है, पर हर एक बच्चे का यही लक्ष्य रहता है कि हमें बाप समान कर्मातीत बनना है, हमें संपूर्ण बनना है, हमें संपन्न बनना। वैसे भी दो शब्द अलग अलग बोले जाते हैं, एक है संपूर्ण और दूसरा है संपन्न। देवताओं का गायन सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण किया जाता है। आप आसमान में भी देखेंगे कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है, तभी उसकी जो छटा है, उसकी चांदनी है, कितनी शीतल और कितनी पावरफुल होती है। तो वैसे ही हम आत्माएं जो कलाहीन बन गई थी, बेहद के बाबा ने आकर के हम बच्चों में सर्व कलाएं भरी, उस संपूर्णता की स्टेज की अनुभूति निराकार बाबा ने हम बच्चों को साकार के द्वारा कराई। बाबा निराकार है, उस निराकारी स्थिति में हमें निराकार को फॉलो करना है, और साकारी जीवन में आते हुए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हुए हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। एक है निराकारी स्थिति और दूसरी है फिर साकारी स्थिति, कर्मयोगी स्थिति। हमने बाबा को देखा कि शिव बाबा के संग में रहते रहते साकार भी कैसे निराकार बन गया, साकार भी कैसे कर्मातीत बन गया, उसके ऊपर कितना संग का गहरा रंग लगा, जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हुआ। अभी आपको और हमको सभी को उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर बाबा चले हैं। हमें कोई नया रास्ता नहीं ढूंढना है, परंतु बाबा के कदम के ऊपर कदम रखते हुए फॉलो फादर करते हुए आगे बढ़ना है। जब कोई नया रास्ता ढूंढना होता है तो उसमें डिफिकल्टी होती है, उसमें मेहनत होती है, उसमें समय लगता है, परंतु अगर एक ही रास्ता है, कोई हमारे आगे चल रहा है, हमको सिर्फ जब उसके कदम के ऊपर कदम रखना होता है तो हमारी स्पीड कम होने की बात ही नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें भी बाप समान बनने के लिए, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रख करके चलना, हमारा ये जो मार्ग है, ये मार्ग हमारा सहज ज्ञान, सहज राजयोग, शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा ने हमें निवृत्ति नहीं सिखाई है, परंतु शुद्ध प्रवृत्ति हमारी बनाई है। प्रवृत्ति में रहते हुए भी वो शुद्धता, वो पवित्रता हम बच्चों के अंदर धारण करना बाबा ने सिखाया। अभी जब हम इस रास्ते के ऊपर चलते हैं तो रास्ते पर अनेक सीन सीनरियां आती हैं, साइड सीन आती हैं, जिन साइड सीन को पार करना होता है। कभी परिस्थितियां, कभी व्यक्तियां, कभी वायुमंडल, कभी वातावरण, सदैव चेंज होता रहता है। कहा जाता है सब दिन हो तो न एक समान, इस ड्रामा का ये अनादि नियम है। एक सीन 5000 बरस के पहले कभी रिपीट नहीं होती, एक बात 5000 बरस के पहले कभी रिपीट नहीं होती है, वो बाद में ही सब रिपीट होता है 5000 बरस के बाद। तो हम देखते हैं रोज नई नई सीन, नई नई परिस्थितियां, नई नई बातें, नई नई परीक्षाएं। वैसे तो स्कूल में हम देखते हैं बरस में एक दो बारी परीक्षाएं होती हैं, करके हर मास में होती है, परंतु हम ब्राह्मण तो 24 घंटा परीक्षा पेपर में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि हम सभी के सामने जिस माया को हमने चैलेंज किया हुआ है वो आकर के खड़ी हो जाती। इसीलिए हमें बहुत अलर्ट रह के, चुस्त रह करके आगे बढ़ना होता है। अभी जब हम इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं तो हमें डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना। तो बाबा ने जो श्रीमत रूपी रास्ता बताया है, अगर सदैव उसको सामने रखते हुए और हमारा जो लक्ष्य है कि मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे बाप समान बनना है, अगर ये दृढ़ संकल्प है तो हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते जाते हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मा बाबा जिस रास्ते पर चले और ब्रह्मा बाबा के सामने जो परीक्षाएं आई, जो परिस्थितियां आई, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे तो हमारे सामने भी वो जरूर आएगी, परंतु बाबा उस रास्ते पर चलते हुए कौन सी स्थिति में रहे, बाबा ने वो सीन सीनरियां कैसी पार किया, सब परिस्थितियों का कैसा डट के मुकाबला किया और आखिर अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। सदैव एक बल और एक भरोसा रहा। तो उसी प्रकार हमारे को भी सदैव एक बल, एक भरोसा रखते हुए बाबा के ऊपर आगे बढ़ते जाना है और श्रीमत रूपी हाथ और साथ पकड़ के चलना है। मन मत, पर मत, जन मत, इन गलियों में कभी भी जाना नहीं, जब सीधा रास्ता है, सामने हाईवे है, तो गलियों में भटकने की आवश्यकता ही नहीं। पुरुषार्थियों को डिफिकल्ट तब लगता है जब मेन रास्ते को छोड़ के गलियों में घुस जाते हैं, तभी तकलीफ होती है। परंतु सदैव अगर हमारे आगे श्रीमत रहे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत इजी, सहज रीति से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। निराकार के जो भी गुण हैं, वो साकार बाप के द्वारा हम बच्चों ने देखे और वही गुण हमें भी धारण करने, संपूर्ण बनने के लिए संपन्न बनने की आवश्यकता है। जितनी जितनी हमारे अंदर संपन्नता आती है, भरपूरता आती है, उतना उतना हम अपने संपन्न स्थिति को, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते हैं। बाबा प्यार का सागर है। भक्ति मार्ग में गीत गाते थे, तू प्यार का सागर है और तेरे एक बूंद के प्यासे हम। परंतु यहां हम बच्चे अनुभव करते हैं कि हम प्यार की एक बूंद के प्यासे नहीं, हम तो सारा समय प्यार के सागर में डुबकियां लगाते हैं। तो साकार बाबा में हमने देखा कि बाबा के अंदर कैसा वो प्यार था, रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार, किसी से भी रिटर्न लेने का कभी भी आशा नहीं, दातापन। जैसा शिव बाबा दाता है, वैसा ब्रह्मा बाबा में भी दातापन के संस्कार थे। मुझे देना है और देना है, रिटर्न नहीं लेना है, परंतु मुझे देना ही देना। तो हमें भी अब जब ये बुद्धि में रहता है कि हम मास्टर दाता है, हमें भी औरों को जो ईश्वरीय प्राप्तियां हुई है वो देनी है। हमने जानकी दादी को देखा, लास्ट दिन तक दादी कहां कहां चक्कर लगाती थी। मैं कभी दादी को बोलती, दादी आप क्यों इतना दूर दूर जाते हैं, थकावट होती है आने जाने, प्लेन में भी जाएंगे थकावट तो होती है और इतनी बड़ी आयु, तबीयत ऐसी। दादी बोलती थी, नहीं, बाबा ने जो हमको दिया है वो मुझे दूसरों को देना, मैंने जो प्राप्त किया है वो मुझे बांटना है, मेरे को मेरे पास नहीं रखना है सिर्फ। तो ये जो दातापन की भावना है, ये जो रहम और दया की भावना है, यही हमारे द्वारा सेवाएं करा। तो बाबा के अंदर भी हमने देखा कि बाबा को सदैव देना देना और देना ही याद। सामने वाले ने किसी ने प्यार दिया या गाली दिया, आप सभी को बाबा के जीवन की कहानी मालूम है कि साकार बाबा को कितना सहन करना पड़ा, सारे समाज का कितना सामना करना पड़ा, घर वालों का सामना करना पड़ा, देश का सामना करना पड़ा, बाहर फॉरेन वालों का सामना करना पड़ा, सबका, देश विदेश का सामना किया, अपने परायों का सामना किया, परंतु डट के रहा। उसको कभी डिफिकल्टी नहीं लगी हो, खुशी खुशी से उसका सामना किया। कभी कभी ऐसा होता था, जो कराची वाले विघन डाल डाल के थक जाते थे और चुप हो जाते थे, तो बाबा बड़े मजे से कहता था, बाबा कहता था, इनको क्या हो गया, सिंध वालों को कुछ करते नहीं, क्या बात। मतलब वो जो करते थे उसमें बाबा मनोरंजन करता था। तो बाबा ने ये बताया कि हर परिस्थिति में हमारी स्थिति कितनी पावरफुल होनी चाहिए, चाहे बेगरी पार्ट आया, चाहे कोई भी समय आया, बाबा ना खुद हिला ना किसी को हिलने दिया। तो हमें जब बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, तो हमारी स्थिति भी ऐसी अचल और अडोल हमको बनानी है जो माया के कितने भी तूफान आवे परंतु वो तूफान हमें कभी भी हिला न सके। तो बाबा हम बच्चों को इतना प्यार देता था, जब हम पार्टी लेके बाबा के पास आते थे, छोटे बड़े बूढ़े सबके साथ प्यार करता। वैसे भी देखो शिव बाबा प्यार का सागर है, उसका सबके साथ समान प्यार, किसी के साथ कम किसी के साथ ज्यादा नहीं है। भले बाबा कहता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, वो लेने वाले नंबर वार लेते हैं, देने वाला दाता तो एक ही जैसा देता है। इसीलिए आप वैजयंती माला देखेंगे तो फर्स्ट नंबर का जो मनका है वो भी फूल को चिपका हुआ है, तो लास्ट नंबर वाला मनका भी फूल को चिपका हो, क्योंकि उसका समान प्रेम। तो साकार बाबा में ये देखा कि बाबा का कैसा सब बच्चों के ऊपर, कोई किसी जात का होने दो, पात का होने दो, कोई भी कैसा भी होने दो, बाबा का सबके साथ प्यार है। मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बाबा के साथ इतना प्यार करते थे, बाबा उनसे प्यार करता था। बुजुर्ग भी जब बाबा से विदाई लेते थे तो रोते थे, परंतु बाबा की बड़ी खूबी थी, जितना प्यारा था उतना ही वो न्यारा था। भले सबकी आंखों में आंसू आते थे परंतु बाबा तो मुस्कुराता रहता था, मिलता रहता था, मुस्कुराता रहता। यहाँ बाहर पीपल का झाड़ है ना मधुबन में, वहां पीछे के साइड पर, वहां बाबा विदाई देने के लिए आते थे, रूमाल हिलाने के लिए आते थे पार्टी को। उस समय तो हम लोगों के पास कार वार कुछ नहीं थी, हम लोग सभी जो आते थे आबू रोड में आते थे, वहां से फिर बस में आकर के बस स्टैंड पर उतरते थे। शुरू शुरू में तो जो सामान होता था वो कुल्ली करके वो सिर पर ले आता था, हम कुछ उठा करके आ जाते थे। फिर जरा हमारी डिग्री बढ़ गई तो हमारे पास एक बैलगाड़ी आ गई, तो बैलगाड़ी में सामान रख के आते थे। फिर और भी डिग्री बढ़ी तो थोड़े साधन बढ़ने लगे, अभी तो बहुत कुछ बढ़ गए। वो भी दिन बड़े प्यारे थे, जाते भी ऐसा ही थे। तो बाबा वहां पर आता था और सभी से एकदम न्यारा और प्यारा होकर के खड़ा हो जाता था, रुमाल हिलाता था, सबको गोसुन कमसुन की टोली देता था। और बाबा बोलते थे, बच्चे खुश रहो आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो। खुश भी रहो आबाद भी रहो, विसरो भी नहीं और याद भी नहीं रहो। इसका मतलब क्या हुआ? भूलना भी नहीं और याद भी नहीं रहना, मतलब दोनों बातों में जैसा कि वो समान था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो निराकार के गुण थे वो साकार में दिखाई पड़े, नहीं तो कैसा मालूम पड़ेगा वो प्यार का सागर। बाबा जितना न्यारा उतना प्यारा था, बाबा जितना गंभीर था उतना रमणीक भी था। बैलेंस, हर गुणों का उसमें बैलेंस था, इसीलिए वो संपन्न बना। गंभीरता, गंभीरता माना रूखापन नहीं था बाबा। बाबा बच्चों के साथ बच्चा हो जाता था, बड़ों के साथ बड़ा हो जाता था, बच्चों के साथ खेलना भी चालू कर देते। तो ये जो बाबा की खूबी थी, इन सब खूबियों को जब हम अपने जीवन में धारण करते, बाबा का कितना सरल स्वभाव था। वो दया का सागर था, कभी किसी के अवगुण उसने अपने चित्त पर नहीं धरे। जैसा निराकार कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता है, वैसा साकार ने कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरे। किसी ने गले लगाया, किसी ने गाली दिया, सबको उसने समान चलाया, किसी को कम और ज्यादा ऐसा नहीं किया। निष्पक्ष, किसी का भी पक्ष नहीं लेने वाला, क्योंकि उसको अपेक्षा ही नहीं थी मुझे किसी से लेना है। जब भी लेने की अपेक्षा होती है तभी पक्षपात होता, उसको लेना ही नहीं था किसी। लेना है तो एक से लेना है, देना है तो सबको देना। तो ये जो बाबा में भावना थी जिसके कारण बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, वो भावना हम बच्चों को अपने अंदर धारण करना, वो दया, वो रहम, जितना जितना हमारे अंदर आता जाता है, निर्माणता आती जाती है, क्योंकि गिरे हुए को उठाने के लिए निर्माण बनना पड़ता है, झुकना पड़ता है। झुकने के बगैर आप गिरे हुए को नहीं उठा सकते। रास्ते में कोई गिर गया, आप उसको हाथ देके सीधा हाथ दे नहीं उठेगा, आपको झुक करके उसको हाथ देना पड़ेगा, तभी तो आप उसको उठा सके। तो वैसा जो आत्माएं गिर गई है विकारों में, विषय विकारों में, उनको निकालने के लिए निर्माणता के गुण की आवश्यकता है। बाबा कितना निर्माण, निराकार भी कितना निर्माण। मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट, ऐसा कोई बोलेगा? कोई गुरु बोल के तो देखे ऐसा? मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, कोई सर्वेंट समझते क्या अपने? कभी शिष्य को बाजू में भी नहीं बिठाएंगे। और हमारा बाबा देखो तो कितना निर्माण, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं बच्चे, मैं तुम्हारा सेवक हूं। ओबीडियंट माना आज्ञाकारी, ऐसा आज्ञाकारी कोई सर्वेंट नहीं मिलेगा नौकर तुमको जो मैं मिला हूं। तुमने बुलाया और मैं चला आया तो कह कितनी आज्ञा मैं तुम्हारी पालन करता हूं बोलो। तो जब बाबा हमारी आज्ञा पालन करता है तो हमें खुद को चेक करना है कि हम बाबा की इतनी आज्ञाओं पर चलते हैं। अगर हम बाबा की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं तो आज्ञाकारी की लाइन में हम नहीं आ सकते। तो हमें संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए बाप को फॉलो करने की आवश्यकता है, बाबा के कदम के ऊपर कदम रखने की आवश्यकता है। जितना जितना हम उसके कदम पर कदम रख के चलेंगे, अर्थात उसको फॉलो करेंगे, उतना उतना हम जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। परंतु उसके लिए सिर्फ एक ही बात है, हमारे पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे बाप समान बनना ही है। जब ये दृढ़ता हमारे अंदर आ जाती है कि मुझे बनना है, कौन बने या नहीं बने इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बनना है। तो जब मुझे बनना ही है ये हम अंडरलाइन कर लेते हैं तो हमारे अंदर वही बनने की कला आ जाती है, वही बनने की एक तात लग जाती है, एक लगन लग जाती है और हम वैसा बनना चालू कर देते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, दृढ़ संकल्प ये एक बहुत बड़ी तीली है। जैसा तीली आप देखते हैं ना, माचिस की कांडी होती है, तीली होती है, आप एक तीली जलाओ जंगल के जंगल जल जाएंगे। वैसे ही अगर आप एक दृढ़ संकल्प करो कि मेरे अंदर ये खामी नहीं होनी चाहिए, तुरंत खलास हो जाएगी। परंतु दृढ़ता के बदले हाँ बन जाएंगे, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये जो गे 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 करते हैं ना बाबा को, गे गे साकार को कभी अच्छा नहीं लगता था। कोई गे गे करते थे ना बाबा कहते तुम छोटे बच्चे गे गे करते हैं। नहीं, हमें करना ही है, करे गे नहीं करना ही है, चलेगे नहीं चलना ही है, बाबा की श्रीमत पर हमको चलना ही है, हमको बाबा जैसा बनना ही है। तो ये जो दृढ़ता है, इस दृढ़ता की तीली को लगाने की आवश्यकता है। वैसे ये दृढ़ता का संकल्प जो है ये एक लिफ्ट का काम भी करती है। देखो आज हम दृढ़ संकल्प करके बैठते हैं कि मुझे सूक्ष्म वतन में जाना है, ये टिकट है एक, मुझे सूक्ष्म वतन में जाना है, एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। मुझे मूल वतन में जाना है, आप एक सेकंड में पहुंच जाएंगे अगर दृढ़ संकल्प करेंगे तो बुद्धि से। मुझे नई दुनिया में जाना है, वो नजारे सामने आ जाएंगे। साकार बाबा को नई दुनिया के नजारे सामने दिखाई पड़ते थे। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे तुम षडपंद पर पहुंचे हो। षडपंद का मतलब सिंधी में ये पहाका है, षडपंद माना हम आवाज देवे सामने से हमको रिस्पॉन्स मिले। तुम इतना नजदीक नई दुनिया के पहुंचे हो तो वहां के जो नजारे हैं, वहां की जो सीन सीनरियां हैं वो सदैव तुम्हारे आंखों के सामने घूमनी चाहिए। अगर वहां की सीन सीनरियां घूमेगी तो यहाँ की सीनरियां आप ही भूल जाएगी। बाबा ऐसा वर्णन करते थे, क्रिएट करते थे हम बच्चों के सामने नई दुनिया को, जैसा ऐसा लगता था हम नई दुनिया में ही बैठे। बाबा की स्मृति इतनी पावरफुल थी, नई दुनिया की स्मृति इतनी बाबा की याद में थी, प्रैक्टिकल स्मृति में थी, इमर्ज रूप में थी। परंतु हमारे को सदैव नई दुनिया इमर्ज होती है,
अगर नई दुनिया इमर्ज नहीं होगी तो पुरानी दुनिया में हमारी बुद्धि जाएगी। बाबा कहते मीठी बच्ची, ये पुरानी दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं। सचमुच हम ऐसा अनुभव करते हमारे रहने के लायक नहीं, या समझते अभी लायक है थोड़ी? हाँ, हमारे रहने के लायक नहीं है, ऐसा बेहद का वैराग दुनिया से हमारे अंदर है। शमशान है, सब मरे पड़े हैं। बाबा ने यही तो, बाबा की कला है बहुत बड़ी, बाबा ने ऐसे ऐसे महावाक्य उच्चारण किए जो हमारे को ये पुरानी दुनिया भूल जाए। नई दुनिया सदैव, बाबा कहते थे एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति तुम्हारी होनी चाहिए। ये पुरानी दुनिया गई की गई, खलास तुम्हारे लिए खलास हो गई। तो जब इतना अटेंशन हम अपने ऊपर रखेंगे तभी क्या होगा, हमारे अंदर वो संपन्नता आती जाएगी, हमारी स्थिति संपूर्ण बनती जाएगी। हमारा जो लक्ष्य है कर्मातीत बनना, बाप समान बनना, वो लक्ष्य सामने रखने से वो क्वालिफिकेशन हमारे अंदर आएगी। साकार बाबा कहते थे बच्चे तुम पार्टी लेके बाबा के पास आते हो, जब ही आते हो तभी तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है। मधुबन में क्या करना होता है, कोई काम नहीं होता है। माताओं को भी क्या काम होता है, क्लास और ग्लास बस, और कुछ नहीं। भाइयों को भी क्या काम होता है, कुछ भी काम नहीं होता है। तो जब भी तुम्हारे को फुर्सत मिलती है तो हिस्ट्री हॉल में आज भी आप देखेंगे वहां श्री लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइन का चित्र बाबा ने रखाया था, वो अभी तक है। बाबा कहते थे इसके आगे आके बैठ जाओ, बैठ के फिर उसके साथ अपनी भेंट करो कि लक्ष्मी नारायण जितने कौन कौन से गुण मेरे अंदर आए, कौन सी मेरे अंदर कमी है। अभी लक्ष्मी नारायण तो दूर रहे पर कम से कम साकार बाबा की कितनी क्वालिफिकेशन आई है वो ही देख ले हम। तो जितना जितना हम भेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे बाबा के साथ, उतने उतना क्या होगा, भेंट करने से हमारी कमजोरियों की भेंट चढ़ती जाएगी, उसके कमजोरियां हमारी छूटती जाएगी। इसीलिए हम जो गॉडली स्टूडेंट है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है, तो हमारे को हमेशा अपनी चेकिंग करनी चाहिए। चेकिंग करने के बगैर हम चेंज नहीं हो सकते। चेक करेंगे तभी तो चेंज होगे ना, कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। जब मालूम पड़ेगा तभी हम उसको परिवर्तन कर सके। तो बाबा हमेशा, इतना बड़ा बाबा होते हुए भी साकार बाबा हमेशा अपने ऊपर फुल अटेंशन रखते थे। कौन सा अटेंशन था बाबा का, जैसा कर्म मैं करूंगा मेरे को देख के बच्चे करेंगे। इसीलिए बाबा का कर्मों के ऊपर बहुत ध्यान रहता था। तो हमारा भी कर्मों के ऊपर इतना ध्यान रहता है कि हम जैसा कर्म करेंगे, बहुत जो पुराने होते हैं ना, बहुत तो उसको उनको नशर है, हम इतने बरस पुराने हैं। परंतु आप ये ध्यान में रखो, आप जितने पुराने होते जाते उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती, क्योंकि लोग उसी दृष्टि से देखते, अरे ये इतने पुराने हो गए फिर इनमें क्या परिवर्तन आया। तो हमारे कर्म ऐसे हो गए, हमारा जीवन ऐसे हो गए जो औरों के लिए दर्पण बन जाए। दर्पण में मुखड़ा देखा जाता है ना आईने में, तो इसीलिए हमारे को देख करके और भी बनने की प्रेरणा ले हमारे से, और भी हमारे से सीखे। ये बीच बीच में जो भट्टियां कराई जाती है ये किसके लिए कराई जाती है, इसीलिए कि चलते चलते कभी ठंडे हो जाते हैं। हाँ, संगम युग पर उतरती कला नहीं होती है, पर ठहरती कला हो जाती कभी कभी, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे, ये जो क्वेश्चन आते हैं ना इसमें स्पीड कम हो जाती। इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों, ये जो क्यों क्या करते हैं ना इसमें ही ठंडे हो जाते। अरे इतना बरस हो गया, ये तो मेरे से बहुत पुराना है, इसमें क्या परिवर्तन आया है। अभी उसमें आया ही नहीं आया, तुम्हारा लक्ष्य ये थोड़ा ही। बाबा हमेशा कहते सी फादर फॉलो फादर, कभी कहा क्या फलाने को तुम देखो और फलाने को फॉलो करो, क्योंकि हरेक जो भी ब्राह्मण है उनका लक्ष्य है कि हमें बाप समान कर्मातीत बनना है, हमें संपूर्ण बनना है, हमें सर्व गुणों में संपन्न बनना है। अभी मेरे को सर्व गुणों में संपन्न बनना है, क्योंकि देवताओं का गायन है सर्व गुण संपन्न, सर्व गुणों में संपन्न बनना है तो मेरे को सबके गुण देखना सीखना पड़ेगा, गुणग्राही दृष्टि रखनी पड़ेगी। जितनी जितनी हमारी गुणग्राही दृष्टि होगी उतना उतना हमारे में गुण आते जाएंगे। कहा जाता है ना, जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। हमारे आदि और अनादि संस्कार जो है उन संस्कारों को इमर्ज करने की आवश्यकता। ये जो हमारे पुराने संस्कार है, पुराने संस्कार ये सृष्टि के मध्य वाले संस्कार है जो स्थिति को मध्यम बना देते हैं। परंतु जितने जितने हमारे अनादि संस्कार है, अनादि संस्कार माना आत्मा के ओरिजिनल गुण, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, ये जो मेरे अनादि संस्कार है सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, ये जो मेरे आदि सृष्टि के गुण है, ये इसको जितना जितना हम स्मृति में रखते हैं स्मृति से हमारे अंदर समृद्धि आती जाती, शक्ति आती जाती है कि अरे ये तो मेरे ही गुण है, मेरे को भूल गया, अभी वापस मुझे धारण कर लो। तो इसीलिए स्मृति को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है, स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए रिवाइज करने की जरूरत। बाबा हम बच्चों को जो रोज इतनी मुरली सुनाता है, बाबा ने दो दिन पहले भी कहा ना, कोई कोई बच्चे कहते हैं हम बाबा से प्रश्न पूछते हैं और बाबा हमको जवाब ही नहीं देता। अरे बाबा तो रोज तुमको जवाब देता है, तुमने पत्र लिखा तो बाबा भी तुमको रोज पत्र लिखता है। ऐसा कोई होगा किसी का प्यारा या प्यारी जो रोज उसको चार पेज का पत्र लिखे? यहाँ बाबा रोज तुमको चार पेज का पत्र लिखता है, रोज याद प्यार देता है, देता है नहीं देता है फिर? और आप देखेंगे आपके मन में जो क्वेश्चन होगा ना मुरली में वही चलेगा, वंडर लगेगा, अरे मेरे को आज ये आया प्रश्न तो इसका तो जवाब ये है, बाबा ने जवाब दे दिया, ये जादू है उसकी मुरली में। तो हमारे को इसीलिए क्या करने का है, बाबा जो हमें सुनाता है उसको घड़ी घड़ी रिवाइज करना। तो जितना जितना हम रिवाइज करते जाते हैं ना तो हमारे अंदर रियलाइजेशन की शक्ति आती है, महसूसता की शक्ति। तो जब महसूसता की शक्ति आती है तभी हम अपने को चेंज कर सकते हैं। मेरे अंदर ये कमजोरी है वो महसूस होना चाहिए, जब तक महसूस नहीं हुआ, आज देखो जैसा शारीरिक बीमारी है, सर दर्द है, सर दर्द महसूस होता है ना, हाथ में दर्द है महसूस होता है, महसूस होता है तभी हम उसकी दवाई करते। तो उसी प्रकार जब हमको ज्ञान के आधार पर, ज्ञान का घड़ी घड़ी रिवाइज करने के बाद हमारे को जब महसूसता शक्ति आती है तो हमें अपनी कमजोरियां दिखाई पड़ती है, उसको निकालने के लिए हम जरूर मेहनत करें। तो फालतू बातों को सोचने के बजाय, फालतू व्यर्थ संकल्प करने के बजाय ज्ञान का मनन और चिंतन करने की आवश्यकता। बाबा ने जो इतना अखूट खजाना हमें दिया है उसका घड़ी घड़ी अगर हम मनन चिंतन करते हैं तो उसमें आत्मा शक्तिशाली बनती जाती, उसमें ताकत आती जाती, क्योंकि हम सभी ने अपना जीवन चाहे कोई प्रवृत्ति में रहता है या सेवा स्थान पर रहता है, सभी ने अपना जीवन ईश्वर अर्पण किया हो। तो जब हम अपना जीवन ईश्वर अर्पण कर देते हैं तो उसके लिए अर्पण करना माना क्या करना, बाबा कहता है तुम ट्रांसफर कर डालो सब कुछ। जैसा आप देखो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, यहाँ का रुपये लंदन या अमेरिका में नहीं चलता है, आपको जाना होगा तो करेंसी बदली करनी पड़ती है। तो यहाँ भी हमको इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है, अपने घर जाना है, तो हमारे को भी तो हमारी जो प्रॉपर्टी है तन मन धन समय संकल्प स्वास्थ्य इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको ट्रांसफर करना माना क्या करना, इसको आप सेवा में लगा दो, जितना जितना हम सेवा में लगाएंगे उतना उतना क्या हो जाएगा, हमारा पुण्य जमा होता जाएगा, उसका रूपांतर पुण्य में हो जाएगा। पुण्य ये बहुत हल्का होता है जो आत्मा के साथ में चलता है। तो बाबा ने हमको ये युक्तियां बताई हुई हैं। फिर तुमको कभी पश्चाताप नहीं होगा कि अरे ये क्या बाबा ने इतना सिखाया पर हमने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो इतनी कमाई नहीं किया। तो क्या होगा, एक तो अनासक्त वृत्ति हो जाएगी और हमने सारा ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, कार्य में लगा दिया, तो उससे क्या हो गया, हमारा पुण्य जमा होता था। पुण्य हल्का होने के कारण आत्मा सहज उड़ सकती। बाबा की याद से पाप दगद होते हैं, श्रेष्ठ कर्मों से पुण्य जमा होते। इसीलिए हमारे दो मेन सब्जेक्ट है ना, ज्ञान और योग। योग है जो किए हुए पाप कर्म है वो दग्ध करने के लिए, ज्ञान है आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म जमा करने के लिए। तो बाबा ने बहुत क्लियर करके हमको बताया हमें क्या करना है। अभी हमारे को सर्वगुण संपन्न बनना है। आपकी भट्टी वो है संपूर्ण और संपन्न। संपूर्ण बनना है बाप समान, वो आपको बताया। अभी संपन्न संपूर्ण ये सर्वगुण संपन्न बनना है देवताओं जैसा। वो कैसा बनेंगे, तो सब में से गुण लेने पड़ेंगे। जैसा दत्तात्रेय को बताते हैं ना, 13 गुरु किए उसने, कुत्ते को भी गुरु किया तो झाड़ को भी गुरु किया, सबको गुरु किया। गुरु करना माना क्या करना, उनके गुण उठाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को चेंज करना पड़ेगा, गुणग्राही दृष्टि बनानी पड़ेगी। जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनते हैं उतनी उतनी हमारी दृष्टि गुणग्राही बनती जाती है। सदैव हमको सब में से गुण धारण करने, इसीलिए कहा जाता है आपको सदैव हर्षित रहना है ना तो हंस मुखी बन जाओ। हंस क्या करता है, नीर क्षीर को अलग कर डालता है, पत्थर को और मोती को अलग कर डालता है। तो वैसा ही तुम अवगुणों को नहीं देखो, गुणों को देखो। हंसमुखी बन जाएंगे तो क्या होगा, एक दो के गुणों को देखेंगे, एक दो के गुणों को देखेंगे तो क्या होगा, वो गुण तुम्हारे अंदर आते जाएगा। और आज देखो आप किसी के भी गुण का वर्णन करो या किसी के गुण को देखो, आपको क्या होती है, खुशी होती है ना, प्रेम आता है उस व्यक्ति के लिए। इसमें बहुत विशेष आता है नहीं आता है। और वही अगर किसी का अवगुण देखो तो क्या होता है, नफरत आती। नुकसान किसका हुआ, मेरा ही नुकसान हुआ ना, मेरी दृष्टि खराब हुई तो मेरा नुकसान हुआ, इसीलिए मैं मेरी दृष्टि को चेंज करने की आवश्यकता। तो ये नहीं देखो इसमें क्या खामियां हैं, बाबा ने देखी क्या हमारी खामियां। हमने तो बाबा को पहले से ही बता दिया, मैं निर्गुण हार में को गुण नहीं तो तू ही तरस पड़ोई, मेरे में कोई भी गुण नहीं है, तो भी बाबा ने हमको गले लगाया। साकार बाबा ने कभी भी किसी का अवगुण अपने चित्त पर नहीं धरा, बाबा ने सदैव गुण देखे बच्चों। तो हमें भी एक दो के सदैव गुण देखने हैं। जितना जितना हम एक दो के गुण देखते हैं उतने उतने गुण हमारे अंदर आते जाते, वो हम धारण कर सकते हैं। अपने चित्त को औरों के अवगुण देख के हमको मैला नहीं करना है, मैला चित्त बाबा से नहीं लग सकता। भक्ति मार्ग में भगवान को शिक्षा देते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। भगवान कहता है मैं नहीं धरता हूं, तुम किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरो, मैं तो दया का सागर हूं, मैं क्यों किसी के अवगुण चित्त पर धरूंगा। तो क्षमा भाव अगर अपने अंदर आ जाता है, किसकी कोई भी गलती होवे हमारे को उसको मदद करनी है उससे छुड़ाने की, किसी में कोई भी कमी होवे, देखो कमी क्या है, कमी माना क्या, कमी माना बीमारी है ना, बीमारी है ना। विकार क्या है, विकार बीमारी है ना, कोई भी विकार, क्रोध है, मोह है या कोई भी विकार है, उसको क्या कहेंगे, बीमारी कहेंगे, क्या कहेंगे। जैसा किसी को पेट की तकलीफ होते कहते इसको पेट का विकार है, पेट का विकार कहते हैं ना, इसको खून का विकार, विकार माना क्या है, बीमारी है ना। तो उसी प्रकार आज कोई भी अगर कमी है, विकार है कोई भी, तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके ऊपर तरस आता है या नफरत आती है, और वो भी अपने घर का आदमी, उससे नफरत करेगा कोई? कितना तरस आता है, अरे बेचारे को बहुत सहन करना पड़ता है, अरे किसी अच्छे डॉक्टर को तो बताओ। तो वैसे ही दूसरों की कमी कमजोरी देख के हमें उसके ऊपर तरस आना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए उससे छुड़ाने की, या उससे नफरत करनी चाहिए। बाबा के अंदर ये विशेषता थी, साकार बाबा की ये खूबी थी, जब किसी की भी कमी देखता था। आज भी बाबा कहता है ना, मेरे को तुम बच्चों की कमी सहन नहीं होती, तुम बच्चे मेहनत करते हो, बाप को सहन नहीं होता है, इसीलिए बाबा इतनी मेहनत कर, हमारे लिए इतनी मेहनत कर। तो हम उसी बाप के बच्चे हैं, और हमारा लक्ष्य बाप समान बनना है, तो बाबा की जो क्वालिफिकेशन है वो हमको धारण करनी। इसीलिए जितनी जितनी हम धारणा करते हैं, बाबा को जितना जितना हम फॉलो करते हैं, उतना उतना हम बाप के समान बनते जाते। तो अपना लक्ष्य हमें कभी भी क्या करना है, अपना जो लक्ष्य है उसको कभी भी भूलना नहीं। लक्ष्य याद रहेगा तो हमारे अंदर लक्षण आएंगे, अगर लक्ष्य याद नहीं रहेगा तो लक्षण भी नहीं आएगा। कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना ही है, परंतु अगर मेरा लक्ष्य होगा जो मिलेगा चलेगा, अरे स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो दास दासी भी होते उसको क्या मेहनत है बताओ, कोई मेहनत नहीं, चलेगा ना, दास दासी बने तो क्या होता है, अरे क्या होता है, क्या फर्क तो है ना, ऐसा थोड़ी है। श्री कृष्ण को 100 दासियां होती है, मालूम है आपको, क्या करती होगी माँ, 100 दासियां बताते हैं श्री कृष्ण। हमारे पास एक बहन थी, वो बोलती थी मेरे को ना श्री कृष्ण की दासी बनना है, लक्षण भी वैसे ही थे, श्री कृष्ण की दासी बनना है। तो ब्रिजेंद्र दादी थी, तेरे को क्यों बनना है श्री कृष्ण की दासी, क्या विचार है, दासी भी कौन सी बनना है, जो उसको चप्पल पहनाते बूट पहनाते, वो सब दासियां अलग अलग होती है, बूट पहनाने वाली दासी होगी, कपड़ा पहनाने वाली दासी अलग होगी, स्नान कराने, सब अलग अलग हो, श्रृंगार करने वाली दासी होगी अलग। तो बोला वो जो बूट पहनाती है ना वो दासी मेरे को बननी। तो बोला क्यों, तुम वो क्यों बनना चाहती है? बोला देखो, अगर मेरा ज्यादा पुरुषार्थ तो है नहीं, अगर मैं प्रजा बनेगी तो कृष्ण का दर्शन तो रोज होगा नहीं मेरे को, मैं राजा ही घराने में तो नहीं आएगी, मेरे को पता है, तो मेरे को रोज तो श्री कृष्ण दिखाई नहीं पड़ेगा, पर मैं बूट पहनाएगी तो कम से कम देखेगी तो सही ना उसको। अभी अगर इतना ढीला लक्ष्य रखा है तो आप बताओ कैसा संपन्न बनेगा व्यक्ति और कैसा संपूर्ण बनेगा। बाबा तो कहता है बच्चे तुम मेरे सिर के मोर हो, मेरे बच्चे मेरे से भी आगे हैं। अरे बच्चे मेरी तो सिंगल पूजा होती है, तुम्हारी डबल पूजा होती है, बाबा कितना चढ़ाता है बच्चों। जब ऐसे ठंडे हो जाओ ना कभी पुरुषार्थ, उस समय बाबा के ऐसे ऐसे महावाक्य रिवाइज करो, आपको ताकत आ जाएगी, अरे बाबा क्या समझता है मेरे को और हम अपने को क्या समझ। जितना बाबा को पहचानने की आवश्यकता है उतना खुद को भी पहचानने की आवश्यकता, इस ड्रामा के अंदर मेरा पार्ट कौन सा, उतना ही माया दुश्मन को भी पहचानने की आवश्यकता है। जब ये इन बातों की पहचान होती है ना तभी हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है, अगर खुद को ही नहीं जानेंगे तो तीव्रता कैसे आएगी। तो खुद को पहचान, बाप को पहचान, ड्रामा को पहचान, सदैव आगे बढ़ते रहो। इसीलिए हमें सर्व गुणों में भी संपन्न बनना है, संपूर्ण स्टेज को भी प्राप्त करना है, अपने अंदर संपन्नता लानी है, अर्थात भरपूरता लानी है। और देवी देवता इतने प्रसन्न क्यों हैं? देवी देवताओं की कोई भी मूर्ति देखो, उनका चेहरा सदैव प्रसन्न, कभी मुरझाया हुआ देवताओं का चेहरा नहीं होता है, प्रसन्न चेहरा होता, क्योंकि उनके अंदर संपन्नता, संपन्नता संपूर्ण बनाती है और उससे प्रसन्नता आती है। तो जितना जितना हमारे ईश्वरीय प्राप्तियों से हम संपन्न बनते जाते हैं उतना उतना हमारे चेहरे के ऊपर वो प्रसन्नता झलकती। बाबा कहता है ना बच्चे, सेवा जो है, सेवा का सबसे सहज साधन बच्चों का चेहरा है। बच्चों के चेहरे से बाप दिखाई पड़ेगा। तो जितना जितना हमारा प्राप्ति वाला चेहरा होगा, उतना उतना हम बाप को प्रत्यक्ष कर सके। जितना जितना हमारा संपन्नता का चेहरा होगा, उतना हम बाप को प्रत्यक्ष कर सके। बाबा कहते थे तुम इतने म्यूजियम बनाते हो, पर वास्तव में देखा जावे तो ये मेरे बच्चे जो भी है ना, ये मेरे चलते फिरते म्यूजियम है, मोबाइल म्यूजियम। क्योंकि इनको देखने से बाबा उनको दिखाई पड़ता है, बाबा को समझ सकते। लोग भी बोलते हैं, आप लोग एक दो को देखते हो इतना नहीं समझता होगा, पर नए आते हैं ना, वो आके यही अनुभव सुनाते हैं, कहते हैं आपके यहाँ सबके चेहरे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्या बात है। एक तो प्यूरिटी की चमक होती है और दूसरी खुशी होती है, तो चेहरे पर आती है ना। और आप खुद भी अनुभव कर लो, ऐसा नहीं आपको मालूम पड़ेगा। कोई व्यक्ति चलते चलते बाबा का हाथ छोड़ के चला जाता है ना, आप उसका 15 दिन के बाद चेहरा देखना कैसा हो जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है, एकदम मालूम पड़ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम्हारे चरित्र जो है वो बाबा का चित्र बतावे। तुम्हारे चरित्र से बाबा का चित्र सबको दिखाई पड़ेगा, तभी सब मानेंगे कि भगवान इस सृष्टि पर आ गया है, उसने इतने बच्चे पैदा किए हैं। क्योंकि बाबा सबसे बड़े से बड़ा बछड़े वाले, इतने बच्चे किसी मनुष्य के थोड़े ही हो सकते हैं। ब्रह्मा बाप भी बछड़े वाले, शिव बाप भी बछड़े वाले, और हमारा इतना बड़ा परिवार है, हा? हम भी कितने भाग्यशाली है, इतना बड़ा परिवार किसी का होगा। और नई दुनिया में तो एक बच्चा और एक बच्ची होती है बस। फिर कलयुग में थोड़े ज्यादा संबंध ये वो इधर उधर हो गए, परंतु बच्चे थोड़े इतने किसी को हो सकते। और संगम युग पर देखो कितना बड़ा परिवार। लोग कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, हम कहते हैं बड़ा परिवार अति सुखी परिवार। हाँ, हमारा ये परिवार इतना सुखदायी है, जो परिवार को देख के ही सुख आता है, खुशी होती है। आपको हो रही ना खुशी सारे परिवार को देख के, वाह हम बहुत बड़े परिवार के। तो बाबा कहता है सदैव गुण गाते रहो, वाह रे मैं, हाँ वाह 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 मेरा देवी परिवार वाह। तो कभी भी किसी के अवगुण आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, सबके गुण ही दिखाई पड़ेंगे, वाह वाह ही आपके मुख से निकलेगी, और आप सदा के लिए वाह वाह हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अपना जो लक्ष्य है भट्टी का, कि हमें बाप समान भी बनना है, हाँ संपूर्ण बनना है, और देवताओं जैसा संपूर्ण संपन्न भी जरूर बनना है। तो इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करके जाना, जो भी यहाँ पर बताया जावे ना, उसको प्रैक्टिकल में लाने का हमेशा करते हो मेहनत, जरा ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि समय कम है ना अभी, इसीलिए थोड़े समय में हमको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ओम शांति।